नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ साझा कर रहा हूं आचार्य शिव पूजन सहाय का संस्मरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, आचार्य शिव पूजन सहाय हिंदी के वो साहित्यकार, वो पत्रकार जिन्होंने हिंदी को एक नया संस्कार प्रदान किया। उनका मानना था किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने वाला साहित्य ही है। सब कुछ खोकर भी यदि हम इसे बचाए रहेंगे तो इसी के द्वारा हम सब कुछ पा भी सकते हैं। और इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने समय के साहित्य के बारे में और साहित्यकारों के बारे में अनेक संस्मरण लिखे। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, प्रेमचंद, प्राडकर अनेक लेखकों पर संस्मरण लिखे। इन संस्मरणों में उस समय के साहित्यकारों का जीवन, उनकी कार्यपद्धति, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनकी सोच और साहित्यिक परिवेश, इन सब के हमें दर्शन होते हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य शिव पूजन सहाय का संस्मरण। भारतेंदु की सर्वतोमुखी प्रतिभा वस्तुतः विस्मयकारिणी है। जिस रंग में आप उन्हें देखेंगे उसी रंग में शराबोर पाएंगे। कविता, नाटक, इतिहास, आख्यिका, व्यंग विनोद, जीवन चरित, धर्म ग्रंथ, जो कुछ भी लिखना चाहा आश्चर्यजनक सफलता के साथ लिखा। इतना ही नहीं, उनको आप विश्व रंगमंच पर अनेक रूपों में देखेंगे। कवि, नाट्यकार, साहित्य निर्माता, अभिनेता, समाज सुधारक, देशभक्त, व्याख्याता, दानी, धर्मनिष्ठ, भक्तिप्रायण, विलासी, विनोदी, लोकसेवक, शिक्षा प्रचारक, पत्र संपादक, देश पर्यटक, संगीत मर्मज्ञ, चित्रकला अनुरागी, सभा चतुर, अन्वेषक, समालोचक, स्वाध्यायशील, पुरातत्व प्रेमी, मित्र वल्लभ, चाहे जिस रूप में, चाहे जिस कला में, जे तो निहारिय नेरे हवे, नैनिन ते तो खरी निकरे से निकाई। भारतेंदु जी का रूप जितना सुंदर था, उनका हृदय उससे कहीं अधिक आकर्षक था। विश्व रंगमंच पर उनका प्रत्येक स्वांग अभिनव छटा दिखाता है। उनमें असीम गुण थे, वे सर्वगुण संपन्न थे। उनका यश दिगंत व्यापी हुआ, इसीलिए उस समय के सभी प्रसिद्ध पुरुषों की मैत्री उन्हें सुलभ हुई। स्वनाम धन्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंग साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र, विद्वान राजा राजेंद्र लाल मित्र, श्री कृष्णदास पाल, श्री केशव चंद्र सेन आदि बंगीय महापुरुष उनके मित्र वर्ग में थे। उदयपुर, छतरपुर, किशनगढ़, काशी, ओरछा, रीवा, दरभंगा, डुमराव, सूर्यपुरा और मंझोली के राजा महाराजा उनके गुण ग्राहक और चाहक थे। लगभग 16-18 वर्ष की अवस्था से उन्होंने साहित्य सेवा का श्री गणेश किया। यों तो बचपन ही से कविता करने लग गए थे, पर युवक होने पर जो लेखनी उठाई तो साहित्य में युगांतर उपस्थित करके ही छोड़ा। 1885 ईस्वी में केवल 35 वर्ष की उम्र में गोलोकवासी हुए, किंतु 17-18 वर्ष के अंदर ही जो कुछ कर गए वह बड़े बड़े दीर्घजीवी भी न कर पाए। उनकी ग्रंथावली 6 बड़े बड़े खंडों में विभक्त है। उसमें छोटे बड़े लगभग 125 ग्रंथ हैं। पत्र पत्रिकाओं, कवि समाजों और सभा सोसाइटियों के लिए लिखी गई स्फुट रचनाओं की कोई गणना नहीं। हिसाब लगाकर देखा जाए तो जान पड़ेगा कि 17-18 वर्ष का समय अहर्निश लिखते ही बीता। हजारों पेज लिखा भी और संसार के अन्य अन्य सुखों का उपभोग भी किया। संभवतः प्रत्येक क्षण आनंद में ही बिताया। साहित्य निर्माण से छुट्टी मिली तो चित्र संग्रह में लग गई। उससे अवकाश मिला तो संगीत सरिता में बह चले। कभी नाटक खेल रहे हैं, कभी ताश शतरंज चौपड़, कहीं सभा में व्याख्यान दे रहे हैं, कहीं कवि समाज में समस्या पूर्तियां सुना रहे हैं। मित्रों में बैठ गए तो हंसी के फवारे छूटने लगे। बालकों में मिल गए तो पूरे कुंवर कन्हैया बन गए, ठीक अपने प्यारे इष्ट देव श्री कृष्ण की भांति हर रंग में चोखे। सचमुच हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा अनूठा पुरुष कहीं कठिनता से मिलेगा। गद्य और पद्य पर समान अधिकार, ब्रजभाषा और खड़ी बोली पर भी वैसा ही प्रभुत्व, बात बात में विनोद और पग पग पर परिहास। धुन सवार हो गई तो एक ही दिन में अंधेर नगरी प्रहसन लिख डाला। कलम उठाते ही हिंदी गद्य का परिष्कार होने लगा। नवीन परिमार्जित शैली के प्रवर्तक बनते देर ही न लगी, कविता की तो धारा ही पलट दी। हिंदी वालों को राग रंग छोड़कर देश दशा पर ध्यान देने का मार्ग सुझाया, साहित्य का कायाकल्प कर डाला। और नाट्यकार ऐसे सच्चे कि अंतिम समय में जब दासी समाचार पूछने आई तो कहा कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया छप रहा है, जिसके पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन शूल की और तीसरे दिन खांसी की सीन तो हो चुकी, अब देखें लास्ट नाइट कब होती है। साहित्यिक मित्र भी उनके समतुल ही मिले थे। कहते हैं भारतेंदु सखा प्रेमघन जी भी नाटक खेलने के बड़े शौकीन थे। पहले पहल सत्य हरिश्चंद्र का अभिनय होने लगा तो स्वयं भारतेंदु ही सत्य प्रतिज्ञ हरिश्चंद्र की भूमिका धारण करने को उद्यत हुए, पर शर्त यह लगा दी कि मेरे योग्य शैव्य मिलेगी तो पार्ट करूंगा। इस पर प्रेमघन जी तैयार हो गए। भारतेंदु जी ने कहा, तुम्हारे तो पिता जीवित हैं, मूछों का सफाया कैसे होगा। प्रेमघन जी छूटते ही बोल उठे, हिंदी के लिए गर्दन तक कटा सकता हूँ, मूछ निगोड़ी क्या चीज है। इसी प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी खासकर नाटक में स्त्री पात्र बनने के लिए सदा केश पाश रखते थे। ये बातें भारतेंदु जी की स्वांग सुंदर आदर्श जीवनी के सुप्रसिद्ध लेखक आरा निवासी बाबू शिवनंदन सहाय जी कहा करते थे। वे जब कभी भारतेंदु जी के संबंध में नाना प्रकार की रोचक बातें सुनाने लगते तब यही जान पड़ता था कि इनके पास भारतेंदु संबंधी बातों का खजाना भरा पड़ा है। कहानी की तरह कहना शुरू करते थे और कहते कहते कभी थकते न थे। मैं जब आरा में रहता था तब उनके सत्संग से बहुत पुरानी साहित्यिक बातों को जानने का सौभाग्य प्राप्त होता था। भारतेंदु मित्र मंडली के सदस्य पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित रमा शंकर व्यास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू राधा कृष्ण दास और महाराज कुमार बाबू रामदीन सिंह के सुपरिचितों और मित्रों में थे, इसलिए भारतेंदु के विषय में उनकी जानकारी बड़ी गहरी थी। उनका जन्म भारतेंदु जी के जन्म से 10 वर्ष पीछे हुआ था, सन 1860 ईस्वी में, और सन 1885 ईस्वी में भारतेंदु जी के गोलोकवासी होने के समय वे 25 वर्ष के उत्साही युवक थे। अतएव भारतेंदु जी के जीवन काल में जो अनेक साहित्यिक घटनाएं हुई थी उनकी स्मृति मस्तिष्क में संचित थी। आरंभ ही से साहित्य अनुरागी होने के कारण साहित्यिक सामग्री का संकलन करने में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। भारतेंदु जी की जीवनी लिखने के लिए मसाला जुटाने में उन्होंने वर्षों बड़ा परिश्रम किया था। जब अपने कागजों का बस्ता दिखलाने लगते थे तब उनका अथक परिश्रम और अध्यव्यवसाय तथा लगन देखकर चकित रह जाना पड़ता था। एक बार उन्होंने भारतेंदु जी के विषय में कुछ किंवदंतियां, भारतेंदु जी हिंदी के ओलिया बादशाह थे, वास्तव में बात भी ऐसी थी। एक दिन भारतेंदु जी अपने मित्र पंडित सुधाकर द्विवेदी के साथ राजघाट पर रेलवे का पुल देखने गए थे। पुल अभी नया ही नया बंध रहा था, हजारों कुली लगे थे, नई नई कलें आई थी। जब देखकर लौटे तो पंडित जी ने एक दोहा कहा, जिस पर संतुष्ट होकर भारतेंदु जी ने तुरंत उन्हें 100 रुपया पुरस्कार दिया। यह बात बहुत प्रसिद्ध है। भारतेंदु जी के मित्र पंडित रमा शंकर व्यास ने भारतेंदु जी के अस्त होने पर चंद्रास्त्र नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, उसमें यह घटना छपी थी। किंतु पंडित अंबिका दत्त व्यास के साथ भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जो आज तक कहीं प्रकाशित नहीं हुई, केवल किंवदंती के रूप में ही रह गई। वह घटना इस प्रकार है। भारतेंदु जी एक बार राजघाट के रेलवे पुल पर टहलने गए, उनके साथ अंबिका दत्त व्यास भी थे। साहित्यिक चर्चा हो रही थी। भारतेंदु जी के पास उस समय द्रव्य का अभाव हो गया था, तब भी उस दिन उनके शरीर पर लगभग 1,500 की पोशाक थी। कश्मीरी दुसाले का अंगरखा, पाजामा, टोपी, चादर, सब बेशकीमती सामान। सोने की घड़ी और हाथी दांत की छड़ी भी थी। उस समय मानस संकावली वाले पंडित वंदन पाठक पधारे। उनके साथ एक गरीब ब्राह्मण भी था। पाठक जी तेल बहुत लगाते थे, इसलिए उनके कपड़े बहुत मैले रहते थे। गुंडीदार कंटो पहने हुए नाटे कद के आदमी थे। भारतेंदु जी उनको स्नेहसिक्त गुसाई जी कहा करते थे। आते ही पूछा, किधर चले? पाठक जी ने अपने साथ के गरीब ब्राह्मण की ओर इशारा करके कहा, इस बेचारे दरिद्र ब्राह्मण की कन्या सयानी हो गई है, विवाह के लिए द्रव्य नहीं है, आपका नाम सुनकर आया है। पाठक जी की बात सुनकर भारतेंदु जी मुस्कुराए। द्रव्य भाव था सही, पर हृदय बड़ा उदार था। बोले, इस समय मेरे पास रुपए तो नहीं हैं, पर अपनी कुल पोशाक दे देता हूँ, शहर में बेचने से कन्या के विवाह योग्य द्रव्य निकल आवेगा। इतना कहकर दुशाले की कुल पोशाक, घड़ी छड़ी आदि दे ही डाली और व्यास जी की चादर लेकर ओढ़ ली। इस पर व्यास जी ने एक दोहा कहा, जिसका आशय यह है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने काशी की पश्चिमी सीमा पर सर्वस्व दान किया था और कलयुग में दानी हरिश्चंद्र ने काशी की पूर्वी सीमा पर सर्वस्व दान किया। इस उक्ति पर प्रसन्न होकर भारतेंदु जी ने अपने हाथ की नग जड़ी अंगूठी निकालकर एक हाथ से व्यास जी की उंगली में पहना दी और दूसरे हाथ से उनका मुंह बंद कर दिया कि अब आगे कुछ मत कहो, मेरे पास यहाँ कुछ है ही नहीं। अभाव ही के दिन थे, एक बार कोई सुपरिचित सज्जन आ पहुंचे। भारतेंदु जी बने ठने बैठे थे, गले में मोती की माला और देह पर कीमती दुशाला। अलमारी से इत्र की शीशी निकालकर विचार में ढाल दी। चिराग जलने लगा और खुद मस्ती में झूम झूम कर कविताएं पढ़ने लगे। आगंतुक सज्जन ने हंसकर कहा, इतने अभाव में भी ऐसे बन संवर कर अलबेला छैला बने बैठे हैं। भारतेंदु जी पान की गिलोरियां मुंह में भरकर मसनत से पीठ टेकते हुए हंसते हंसते बोले, क्या सचमुच आपको आज की सजधज बहुत पसंद आई? वे बोले, खासकर इस वक्त इस माला और दुशाला की फबन बड़े निराले मालूम होती है। यह सुनकर भारतेंदु जी ठठाकर हंसे और फिर बात पलटकर दूसरी साहित्यिक चर्चा छेड़ दी। जब वे महाशय उठकर जाने लगे, तब भारतेंदु जी ने दुशाला उन्हें उढ़ाकर माला उनके गले में डाल दी और कहा, जो चीज आपको पसंद है वह आपकी नजर है। वे महाशय दंग रह गए, हजार आनाकानी की, लाख पीछा छुड़ाया, पर भारतेंदु जी अड़ गए कि डीठ गड़ाकर जाते हैं किधर। मीठी धमकी से उन्हें कायल किया और वे बने ठने ही विदा हुए। भारतेंदु जी बहुभाषा विज्ञ भी थे। एक बार युवावस्था में आरा नगर की एक बारात में काशी से आए थे। उस समय लोगों के आग्रह से उन्होंने 26 पंक्तियों में 13 भाषाओं की लिपियां लिखी थी। उनकी वह अमूल्य हस्तलिपि आरा की नागरी प्रचारिणी सभा को बाबू रामकृष्ण दास अग्रवाल ने दी थी। मैं सभा का सहायक मंत्री था और उस हस्तलिपि को शीशे में मढ़ाकर अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के पटना वाले दशम अधिवेशन की प्रदर्शनी में ले गया था। प्रदर्शनी के प्रबंधक थे बाबू जगत नारायण लाल। उनको उस हस्तलिपि के खो जाने का बड़ा दुख हुआ। पता नहीं उसे प्रदर्शनी से किसने गायब कर दिया। आज वह चीज होती तो भारतेंदु अर्धशताब्दी के अवसर पर उनकी शोभा निराली ही दिख पड़ती। उसी के साथ एक हस्तलिखित ग्रंथ भी खो गया था, जो उक्त सभा से ही प्रदर्शनी में आया था। वह परमानंद कवि कृत बिहारी सतसई की संस्कृत टीका थी। उसी टीका पर भारतेंदु जी ने परमानंद कवि को 500 रुपया पुरस्कार दिया था। इन दोनों अमूल्य वस्तुओं की स्मृति बराबर खलती रही है। दोस्तों, ये था आचार्य शिव पूजन सहाय का संस्मरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस संस्मरण से आपने महसूस किया होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो दान वृत्ति और जिस तरह का उनका स्वभाव था फकड़ाना, कि वे किस तरह से साहित्य के ऊपर अपनी संपत्ति को लुटाते थे और उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। भारतेंदु के जीवन के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में कई बातें हमें इस संस्मरण से प्राप्त हुई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये संस्मरण पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और संस्मरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।